ॐ नमो भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय निगमकल्पातरोर्गलितं फलं सुखमुखदमृतदिव्यसम्मुदं विविधभगतं रासमालयं मुहुरोराशिकभुविभावुकः नारायणं नमस्कृत्य नारं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत् नाष्टपयेष् विदेशो नित्यं भगवदसेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिके एते चमसाकला पुंसं कृष्णस्तु भगवन् स्वयं इन्द्रियारि व्याकुलं लोकं म्रियन्ते युगे युगे अब श्रीमद् भगवतम से पढ़ रहा है पंचम अध्याय पंचम स्कंद अध्याय बारह श्लोक संख्या चार यत् अहम् योग ईश्वरं दृश्यमानं क्रियाफलं सत् व्यवहार मूलम् न हि अञ्जसा तद्वा विमर्शनाय भवान् अमुष्मिन् ब्रह्मते मना मे यदाह योगेश्वर दृश्यमानं क्रियाफलं सद्व्यवहारमूलं न्ययञ्जसतत्त्वविमर्शनाय भवानमुष्मिं क्रममतो मनो मे यदाह योगेश्वर दृश्यमानं क्रियाफलं सद्व्यवहारमूलं न्ययञ्जसा सतत्त्वविमर्शनाय भवान् अमुष्मिन् प्रमाते मनो मे यद् आह योगेश्वर दृश्यमानं क्रियाफलं सद्व्यवहारमूलं नह्यञ्जसा तत्त्वविमर्शनाय भवान् अमुष्मिं ब्रह्मते मनो मे यत् जो अहम् अपने कहा है योग ईश्वरं हे योग शक्ति के स्वामी दृश्यमानं भली भांति दिखते हुए क्रियाफलं शरीर को इधर उधर हिलाने दुलाने का शरीर को इधर उधर हिलाने दुलाने का फल यथा थकान सत विद्यमान व्यवहार मूलम, जिसका आधार केवल शिष्टता है, नहीं ही निश्चय ही अंजसा वस्तुता वास्तव में तत्व विमर्शनायम विमर्श द्वारा सत्य को समझने के लिए भगवान आप अमुष्मिन उस कथन में भ्रमते चक्र कत रहा है, मना मन में मेरा अनुवाद और तात्पर्य शिला इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। हे योगेश्वर, आपने कहा है कि शरीर को इधर उधर हिलाने दुलाने से उत्पन्न थकान प्रत्यक्ष अनुभवमय है, किंतु वास्तव में कोई थकान नहीं रहती, वो तो कहने के लिए होती है। ऐसे प्रश्नोत्तरों से परम सत्य के विषय में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। आपके इस कथन से मेरा मन कुछ कुछ विचलित है। तात्पर्य, देहात्म बुद्धि के संबंध में औपचारिक प्रश्नोत्तर से परम सत्य का ज्ञान नहीं होता। शारीरिक सुखों तथा दुखों की औपचारिक समझ परम सत्य के ज्ञान से भिन्न है। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को बताता है कि शरीर द्वारा सुख दुख का अनुभव क्षणिक है, वे तो आते जाता है। मनुष्य को चाहे कि इनसे विचलित ना हो, वरन इन्हें सहन करके आत्म तत्व प्राप्त करने में लगा रहा है। ओम अज्ञानातिमिरन्तस्या ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले संयम रूपागदामयं तदाति सापदंतिकं वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतपदगमनं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगनारघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सागना ललिता श्रीविशकन्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकांता राधाकांता नमस्ते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणामामि हरि प्रिये। पञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैता गदाधर शिव श्री गौर भक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो हरे रामो राम रामो हरे हरे। तो इस अध्याय में महाराज रहुगण तथा जर भरत की वार्ता चल रही है। पहले अध्याय से भी जर भरत राजा रहुगण को शिक्षा दी थी और यहां पर विनम्र भाव में रहते हुए महाराज रावगान कहता है कि जो आप बताता है मैं अच्छी तरह से नहीं समझ सकता हूं, इसलिए कृपा करके दूसरे शब्दों में फिर से बताइए कि आप क्या कहना चाहता है। तो भगवद गीता में भी तो कृष्ण कहता है कि तद विधि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षति देज्ञानम ज्ञानिनस्तत्व दर्शनः। तो भक्ति मार्ग में आध्यात्मिक मार्ग में आगे जाने के लिए तत्व दर्शनः जिन्होंने तत्व परम तत्व भगवान का दर्शन किया है उनके पास जाना है। ये गुरुजन है जो भगवान के प्रतिनिधि है और ये भी बताता है कि कैसे उनके पास जाना है और तद्विधि परिपातेना परिप्रश्नन सेवया विनम्र भाव में रहते हुए सेवा भाव में रखते हुए कि गुरु और कृष्ण की सेवा करना है, गुरु के आदेश अनुसार सेवा करना है, भजन करना है और प्रश्न भी पूछना है, हे गुरुदेव मैं कैसे आगे जा सकता हूं भक्ति मार्ग में, मैं तुच्छ हूं, मुझे कुछ नहीं मालूम है, मैं फंसे हुए हूं इस भौतिक जगत में। इस भाव से गुरु के पास जाना है, वैष्णव के पास जाना है। गुरुपाद आश्रय ये भक्ति के पहले अंग है और ये राहुगान तो राजा है और लेकिन जैसे इस अध्याय के पहले श्लोक में प्रणाम करते हुए नमो नमः कहता है, अब भगवान के प्रतिनिधि है, शक्तिशाली है, इसलिए भी नम्र भाव से मैं पूछता हूँ आपने कुछ बताया है मैं नहीं समझ सकता हूँ, अब क्या कहना चाहता है। तो क्योंकि तो शुद्ध वैष्णव तीन गुण से परे है और लेकिन प्रयास करता है सरल विधि से सब कुछ बताने के लिए और कैसे करना है। जैसे प्रभुपाद भी तो शुद्ध वैष्णव और यहाँ पर भरतवास में तो कृष्ण के परिकर होते हुए वैष्णव परिवार में जन्म लिया और शिक्षा प्राप्त किया पिताजी से, इसके बाद उनके गुरु महाराज के पास पहुंच गए श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद जो बहुत बड़े विद्वान थे, शुद्ध वैष्णव और शास्त्र के अनुसार शास्त्रविद, वेदांतविद, सिद्धांतविद, भक्ति शास्त्र विद थे, उनके पास पहुंच गया और उनके शरण में आया और पूछताछ उन्होंने भी किया कि कैसे आगे जाना है। और पहले क्योंकि गृहस्थ आश्रम थे और उसी समय ये जो अंग्रेजियां ब्रिटिश यहाँ पर थे उसके कारण से गांधी के आंदोलन में इसमें भाग लिया थोड़ा बहुत और इस कारण से भक्ति सिद्धांत जब पहले बार से उनसे भेंट हुए तो उनसे पूछा, जब उनसे तो श्रवण किया भगवान के बारे में, महाप्रभु के बारे में कि जब हम स्वतंत्र नहीं है कैसे तो शरण भजन कर सकता है, जब ये अंग्रेजी यहाँ पर है, ब्रिटिश जो है यहाँ पर है तो हम कैसे आगे जा सकता है। तो भक्ति सिद्धांता तो उत्तर दिया प्रश्न के कि हम इसके इंतजार नहीं कर सकते, प्रतीक्षा नहीं कर सकता है, कब विमुक्त होंगे अंग्रेजी के लोग से, लेकिन हमको श्री चैतन्य महाप्रभु के जो जिस उल्लेख है चैतन्य चैतन्यमृत में, उन्होंने जो दिया है शिक्षा, जैसे शिक्षा अष्टकम में, इसके अनुसार हमको चलना है, भजन करते हुए चलना है। ऐसे करते हुए हम इस भौतिकल माश से विमुक्त हो जाता है, उत्तम अवस्था पर पहुंच सकता है। और प्रभुपा ने मान लिया, इसके बाद साधन भजन किया। शुद्ध वैष्णव तो नित्य सिद्ध परिकार तो है, लेकिन फिर भी उदारनाथ, और जब इस भौतिक जगत में भी आ जाता है शुद्ध वैष्णव भगवान के नित्य सिद्ध परिकार, जैसे सदन पुरुष उनके शुरुआत में तो जीवन होता है, पैदा होता है और विद्यालय में भी जाना है, आकार ABC सीखना है, 1 2 3 1 2 3 नाना सीखना है। इसके बाद पिताजी के अनुसार सब कुछ करना है, माता के अनुसार कैसे खाना लेना है, क्या करना है क्या ना करना है, ये सीखना है। लेकिन इसके बाद तो शुद्ध वैष्णव के पास पहुंचना है और उनके शिक्षा के अनुसार सब कुछ करना है, ऐसे करते हुए आगे जा सकता है। तो राहुगान रजत है, शिक्षित भी थे, तो राजकुल में तो वहां पर राजा पुत्र को, युवराज को शिक्षा देता है। इसके बाद गुरुजान है, मंत्रियां भी है, मंत्रीगान है, अलग अलग गुरुजान है जो शिक्षा देता है शास्त्र के, अस्त्र के, जिसे युवराज अच्छा राजा बन सकता है, बन जाता है। शिक्षा तो प्राप्त किया था, लेकिन शुद्ध वैष्णव नहीं थे। जैसे आजकल हमको हम देखता है कि भरतवर्ष में भी ज्यादा लोगों को मालूम है कि भगवान है और हम शरीर नहीं अपितु आत्मा है, लेकिन जो अच्छे तरह से भक्ति मार्ग में लीन है, जो साधन भजन अच्छे तरह से करता है, ये दुर्लभ है। सदगुरु दुर्लभ है, सद शिष्य भी दुर्लभ है, लेकिन यथासंभव हमको आगे जाने की प्रयास करना है। तो महाराज राहुगान रजत है, शिक्षा प्राप्त किया था गुरुजान से, पिताजी से, लेकिन भौतिक भावना भी था उनके। ये स्वाभाविक है, जब राजा है और जब भौतिकवादियों के साथ तो रहता है, विशेष करके जब तो क्षत्र के कुल में है या वैश्य के कुल में है, तो इस भजन में लीन होना तो मुश्किल है। लेकिन यथासंभव तो प्रयास करना है ब्राह्मण के लिए, जो ब्राह्मण कुल के जो पुरुष है, स्त्री भी हो, तो उनके लिए थोड़ा सा आसान है आगे जाने के लिए, क्योंकि शुरुआत से ब्राह्मण जो है घर पे पूजा कर रहा है, इसके बाद पुरोहित के रूप में भी अलग अलग संस्कार जो होता है, यज्ञानुष्ठान होता है, करवाता है, और ऐसे करते हुए उनके लड़के भी पुत्र भी जल्दी तो उपनयन संस्कार उनके होता है जब 8 या 12 साल के बीच में है, तो इसलिए इसमें लीन हो जाता है, तो आगे जाने की संभावना ज्यादा है जब ब्राह्मण कुल का है। लेकिन आजकल भी जो वास्तविक ब्राह्मण जो है ये भी दुर्लभ है। तो राजा के बारे में क्या कह सकता है, और वास्तव में ये भी उल्लेख किया है हमारे पूर्वाचार्यों ने कि कौल और शूद्र संभव, कलयुग में लगभग सब शूद्र के समान है, क्योंकि संस्कार नहीं होता है आजकल। ये जो 10 संस्कार जो होता है, जिससे योग्यता बन जाता है, जिससे हम भजन कर सकता है, आगे जा सकते भक्ति मार्ग में, तो राघवान रजत है लेकिन भजन नहीं करते थे अच्छे तरह से, और उनके शिष्टाचार जो था व्यवहार एकदम सही नहीं था। उनके जो पालकी में बैठे हुए थे और जो पालकी जो चार जान थे ताते थे उनको भी गाली देते थे, जार बारा को गाली देते थे। लेकिन इसके बाद जब उसको गाली दिया तो जवाब दिया, उत्तर दिया, क्योंकि जरबरा तो पहले पूर्व जन्म में तो महापुरुष तो थे, भरत महाराज उनका नाम था, ऋषभ देव जो भगवान के अवतार है उनके पुत्र थे, ज्येष्ठ पुत्र थे, और जो नाम जो इस द्वीप के जहाँ इसमें उपस्थित है इसका नाम तो है भरतवर्ष, भरत महाराज के, क्योंकि वे अच्छे सम्राट थे इसलिए ये द्वीप का नाम तो यहाँ पर का, और वर्षा जो जम्बूद्वीप के नौ वर्षा एक है तो भरत वर्षा, क्योंकि प्रसिद्ध थे इसलिए नाम तो वर्ष का रख दिया था। वहाँ पर उसी समय के गुरुजान भरत वर्षा, लेकिन अच्छा तो राज्य का शासन किए थे और दयालु थे, भक्त थे, भाव वस्त्र में थे, जो उच्च वस्त्र में है, जैसे रूप गोस्वामी कृपा उन्होंने उल्लेख किया है भक्ति रसमृत सिंधु आत अवस्था है भक्ति के, सबसे पहले श्रद्धा होना चाहिए, भगवान है हम भगवान के दास है, शरीर नहीं है, तो भरतवर्ष में रहते हुए लगभग सबको मालूम है, लेकिन ये लौकिक श्रद्धा है, हाँ भगवान को मानता है लेकिन क्या करता है भगवान के लिए, एक मिनट के लिए सुबह उठ के प्रणाम करता है, शायद अगरबत्ती चलाता है, आजकल ज्यादा नहीं करता है लोग, सिर्फ जो वैष्णव के आंदोलन में गुरु के शरण में है, वैष्णव के परिवार में जिनका जन्म हुआ ये थोड़ा सा ज्यादा करता है, दूसरे को ज्यादा नहीं करते आजकल, इसमें रुचि भी नहीं है, तो इसलिए शुरुआत जो होता है लौकिक श्रद्धा है, लेकिन जब साधु के संग में है श्रद्धा सदसंग, जब साधु के संग में जो भगवान के प्रतिनिधि है उनके सानिध्य में समझ सकता है कि कैसे आगे जाना है इस भौतिक जगत में, मनुष्य शरीर प्राप्त होते हुए भजन ही करना है, पैसे कमाने के लिए भी वान आश्रम के अनुसार तो रहना है, सब व्यक्ति को पुरुष स्त्री वान आश्रम में तो होना चाहिए, एक वान में आश्रम में होना चाहिए, लेकिन भगवान केंद्र में होना चाहिए, और वान आश्रम मतलब आश्रम है, आश्रम मतलब क्या है, वहां पर ठाकुर जी की सेवा होता है, साधु भजन होता है, ये आश्रम है। तो ऐसे करते हुए तो आगे जाने की प्रयास करना है। तो भरत महाराज तो रजत है, वैष्णव तो गुरुजान के अनुसार सब कुछ करते थे, भगवान की सेवा करते थे, तो सदसंग में संभव है भगवान की सेवा कर सकते हैं, साधु की बिना गुरु की बिना कैसे ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं, संभव नहीं है। इसके बाद तो भजन करते हुए भजन क्रिया हम आगे जा सकता है, इसके बाद जो अनर्थ जो है दूर हो जाता है, अनर्थ जो नहीं होना चाहिए भाव में, भावना में, दिल में, व्यवहार में, जैसे चार प्रकार के है ये भी विभाजित है, हर जो चार प्रकार के, जैसे असत तृष्णा जो असत है, जो भौतिक चीज जो है तृष्णा, इसके ओर तो आसक्ति रखना, इसमें रुचि लेना, असत तृष्णा ये एक प्रकार के अनाता है, तमसीमा ज्योतिर्गमयः तमगुण छोड़ना है, कृष्ण भावनामृत में होना चाहिए, असत मा सत गमया, जो असत है ये छोड़ना है, सत सदगुरु के पास जाना है, भजन करना है, मृत्मा अमृत गमया, शरीर जन्म चक्र जन्म मृत्यु चक्र जो होता है ये छोड़ना है, अमृत आध्यात्मिक जीवन इसमें लीन होने चाहिए। असत तृष्णा, जो असत है ये छोड़ना है, ये हृदय और बाल्या दूसरे प्रकार के अनर्थ है, जिससे हमको मालूम है कि शरण भजन करना है और व्रत का पालन करना है, गुरु के अनुसार सब कुछ करना है, लेकिन जब हृदय जो जब निष्ठ नहीं है, दिल जो होता है तो स्थिर नहीं है, तो कभी कभी होता है कोई व्रत लेता है चतुर्मास व्रत, उसी समय कोई मिठाई नहीं लेंगे, प्रयास कर रहा है लेकिन कोई आ जाता है, रसगुल्ला बढ़िया रसगुल्ला है देख लो, तो भूल जाता है वो खाता है, इसके बाद आए बाबरे बाप तो भूल गया मैंने तो व्रत किया है, तो हृदय दौर बालिया दूसरे भी उपमा तो है। तो तीसरे प्रकार के अपराध है ये अनर्थ जो होता है, अलग अलग प्रकार के अपराध है, नाम अपराध इससे बचना चाहिए, 10 प्रकार के नाम अपराध है, 10 प्रकार के धाम अपराध है, और ठाकुर जी की सेवा के संबंध में अलग अलग 6-7 प्रकार के अपराध है, इससे बचना चाहिए, वैष्णव अपराध भी, और जीव जीव हिंसा, तो सबके साथ अच्छे तरह से रहना है, सोचना है दूसरे के बारे में, दूसरे के गुण देखना है दोष नहीं देखना, शिव पति जी या गुरुजन जो है माता जी जो शिष्य को बताना है कि ये ठीक नहीं है ऐसा करना है, कभी कभी दंड देना है, लेकिन अन्यथा दूसरे के संबंध में दूसरे के गुण देखना है दोष नहीं देखना है, और अच्छा तरह से मृदुल वाणी से बात करना है दूसरे के साथ, और दूसरे के साथ लड़ाई करने तो हाथ उठाना तब पर देने दूसरे को ये बिल्कुल ये तो अपराध है। तो ये चौथे प्रकार के अनर्थ है सुरुभम, एक प्रकार के मोह है, भगवान कौन है, हम कौन है, शरण भजन कैसे करना है अगर अच्छे तरह से नहीं मालूम है, ये एक प्रकार का अनर्थ है, इसलिए गुरु के पास जाना है जो शास्त्रविद है सिद्धांतविद है भक्ति रस शास्त्रविद है गौड़ीय वैष्णव है ब्रज के वक्ता है, उनके पास जाना है, उनके मार्गदर्शन के अनुसार चलना है, तब निष्ठ के वस्त्र पर पहुंच सकता है, दृढ़ विश्वास जब है तो परमात्मिक श्रद्धा जब है तब आगे जा सकता है, जब 3 गुण से परे है, तो इसके बाद तो नाम में रुचि मिलता है, तो शुरुआत में जप करता है हरे कृष्णा इत्यादि, लेकिन दूसरी चीज के बारे में भी सोचता है, खाना कब होगा, सर चय है अभी 1 घंटे और 1.5 घंटे और इसके बाद खाना मिलेंगे भाप प्रसाद मिलेंगे, और दूसरे के बारे में ये बात मेरे को गली दिया है ये किया है वो किया है, तो ये सब व्यर्थ चीज के बारे में ये तो चोरना है जब के समय, लेकिन जब नाम रुचि नहीं है तो मन इधर उधर चले जाता है, पूरा विश्व में विदेश में भी जाता है, पुजारी भी आता है ठाकुर जी की सेवा मौके मिल गया है लेकिन सोच रहा है विदेश जाना है अमेरिका जाना है, नहीं गलोक वृंदावन जाना है या श्वेतद्वीप नवद्वीप जहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु विराजमान है आध्यात्मिक जगत में कृष्ण लोक में वहां पर जाना है, इसलिए कृष्ण के चिंतन करना है जप के समय और उनके परिकार के उनके लीलाएं के, तो इसके लिए तो अच्छे तरह से सेवा करना है, विनम्र भाव में रहते हुए गुरु के पास प्रश्न पूछते हुए और श्रवण करते हो कि मुकुरविंद से महाप्रभु के बारे में, कृष्ण के बारे में, और शास्त्र पढ़ना है विशेष करके ब्रज लीला के, महाप्रभु के लीला के, क्योंकि वहां पर जाना है तो कृष्ण क्या कर रहे हैं, महाप्रभु क्या कर रहा है, ये हम कुछ इसके श्रवण करना है। ऐसे करते हुए जब के समय इसका स्मरण भी कर सकता है और ठाकुर जी की सेवा करना है, रोज रोज दर्शन लेना है, तब जब के समय भी महाप्रभु गौनीताय का कृष्ण बलराम राधा श्याम सुंदर का चिंतन कर सकता है, तब रुचि आ जाएगा, तब निरंतर भगवान का नाम ले सकता है, तब अच्छे तरह से जप करते हुए दो घंटे बीत गया, बीस माला हो गया, अरे अभी कुछ सेवा करना है, दर्शन लेना है ठाकुर जी के, लेकिन कुछ समय भी जगुरु के पास है और जप करता है 24-32 क्योंकि रुचि है तो आनंद अनुभव करता है। जब अच्छे तरह से जप करता है तो इसके कोई उपमनाए है दूसरी चीज के, जो फिर भी जब ठाकुर जी की सेवा करता है इसमें भी सेवा रुचि होता है, जब रुचि की अवस्था पे है, जब नाम रुचि है तब सेवा रुचि भी है, सेवा में भी रुचि मिलता है, तब आगे जा सकता है, भौतिक आसक्ति से विमुक्त होकर भगवान के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, तब भाव अवस्था में आ सकता है। और भारत महाराज भाव के अवस्था में थे, तीन गुण से परे थे, आत्म तत्व प्रोपद इसमें उल्लेख किया है, तत्पर्य में मनुष्य को चाहिए अंत में कि इनसे विचलित ना हो, भौतिक चीज के ज्योतिष विचार ये भौतिक विचार से विचलित ना हो, वरन इन्हें सहन करके जो समस्या जो आ जाता है ये सहन करके आत्म तत्व प्राप्त करने में लग रहा है। तो आत्म तत्व के अवस्था पर पहुंचना है, आध्यात्मिक अवस्था पर पहुंचना है, जो तीन गुण से परे है उस अवस्था पर पहुंचना है, तब दिल से तो आत्म से जिसका सच्चिदानंद स्वरूप के आत्मा के, लेकिन शुरुआत में सिर्फ मालूम है हम आत्मा है, लेकिन आत्मा का तो स्वरूप नहीं पहचान सकता है शुरुआत में, लेकिन भजन भजन करते हुए करते करते हुए तो अनुभव कर सकता अपना वास्तविक स्वरूप। जब उसी अवस्था पे भाव अवस्था के तो समझ सकता है धीरे धीरे अपना स्वरूप, तब स्वरूप से अलग अलग भाव प्रकट होता है, तब वास्तविक आदान प्रदान होता है कृष्ण के साथ। उस अवस्था पे थे जो उत्तम अवस्था के है भक्ति के, लेकिन भगवान की एक प्रकार के लीला है हमको दिखाने के लिए कि हम सावधानी से रहना चाहिए, आगे जाना है सावधानी से, विनम्र भाव में रहते हुए, शुद्ध वैष्णव के संग में रहते हुए हमको आगे जाना है, अन्यथा किरण की संभावना है। तो भरत महाराज सब कुछ छोड़ दिया, राज्य दो प्रकार के, तो वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश किया, दो प्रकार के वानप्रस्थ है, एक है जो अकेले जाता है वन में, सब छोड़ता है, पत्नी रानी को छोड़ दिए, बच्चे सब कुछ, और उनके साथ कोई नहीं था, कोई सेवक नहीं था, अकेले गया बिल्कुल अकेले। और ये भी जो उनके राज्य के वेश आभूषण सब छोड़ दिया, सरल वस्त्र पहनते हुए गए, कुछ नहीं था उनके पास, भगवान के भरोसे में रहते हुए वन में थे, ये वास्तविक वानप्रस्थ है, तो अकेले जाता है। लेकिन दूसरा है, अगर ये संभावनाएं है और कलदेश पत्र अनुसार के अनुसार देखना है तो पत्नी भी उनके साथ जा सकती है, लेकिन ये भी इस विनम्र भाव में रहना है और सब कुछ छोड़ना है, जिससे स्त्री के साथ तो किन्न सारी है, 10-15-20 साड़ियां हैं, आभूषण है, हार है, कुंडल है सोने के, लेकिन ये सब छोड़ना है जब वानप्रस्थ में आश्रम में प्रवेश कर रहा है स्त्री भी, तो ये भी सब कुछ छोड़ दिया, साड़ियां छोड़ दिया, आभूषण हार मंगलसूत्र सब छोड़ दिया, सल का सल वस्त्र पहनते हुए जैसे पृथ्वी महाराज, इसमें भी उल्लेख किया है भागवत में, अकेले वान में गाया, इसमें उल्लेख किया अकेले वान में गाया, मतलब सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन इसमें उल्लेख भी किया है कि उनके पत्नी उनके साथ भी थी, लेकिन सब कुछ छोड़ दिया, कोई सेवक ना था, ये दूसरे प्रकार के वानप्रस्थ है। लेकिन तो भरत महाराज अकेले गए और तो सब कुछ छोड़ दिया, और ये भगवान के वास्तव में ये एक प्रकार से पूर्व संस्कार के फलस्वरूप भी कह सकता है कोई, लेकिन वास्तव में ये भगवान के उच्च कोटि के भक्त थे। तो हमको दिखाने के लिए ये तो लीला तो हुई और महाग्रस्त हो गया, तो देखा कि एक हिरण तो पानी के लिए तो नदी के पास वहाँ पर पहुँच गए, पानी पिया और गर्भवती थी, और एक शेर वहाँ पर उनके पीछे पड़ गया तो डर के मारे तो नदी में प्रवेश किया और इसके बाद जन्म दिया, तो इसमें लेकिन वो मर गए। तो ये देख के भरत महाराज, क्योंकि वैष्णव के ये बहुत दयालु है, तो उन्हें सोचे ये तो उनके माँ का देहांत हो गया, इसके उनको वहाँ से निकालना है, और उनको निकाला छोटा सा बच्चे के और उनका पालन पोषण किया। लेकिन जब छोटा सा हिरण के बच्चे का पालन किया था तो थोड़ा सा उनके वजन जो है अच्छे तरह से नहीं हुआ, और देह त्याग के समय बच्चे का स्मरण करते हुए तो त्याग छोड़ दिया, ये शरीर तो छोड़ दिया, और इसके फलस्वरूप तो इस हिरण के रूप में भी उनका अगले जन्म हुआ। लेकिन भगवान की कृपा से, क्योंकि उच्च कोटि के वैष्णव थे, फिर से पूर्व जन्म का तो क्या हुआ घटना हुआ इसका स्मरण हम भी कर सकता था, और इसलिए साधु के पास रहते थे और प्रसाद मिलते थे, और फिर से इसके बाद शरीर छोड़ के जार भारत के शरीर में तो इसका अगले जन्म तो हुआ, और फिर भी उसी समय भी भगवान की कृपा का विस्मरण था कि क्या हुआ पहले, इसलिए भरत महाराज के अवधूत के अवस्था में रहते थे, तो इसलिए सावधानी से रहना है। और लेकिन भगवान तो बहुत दयालु है, जितना भी किया है इस जन्म में, तो जब ये नम्र भाव में रहता है, अगर पूर्ण ये उत्तम अवस्था पर नहीं पहुंचता है, स्वरूप सिद्धि नहीं मिलता है, और फिर से जन्म अगर लेना है, तो भगवान की कृपा से जहाँ पर तक पहुंच गया है वहाँ से आगे जाता है अगले जन्म में भगवान की कृपा से। इसलिए वैष्णव के लिए कोई चिंता नहीं है, अगर सिद्ध अवस्था पर पहुंचता है अत्युत्तम है तो कृष्ण की लीला में प्रवेश कर सकते हैं शरीर त्यागने के बाद, लेकिन अगर नहीं तो अगले जन्म में ये वैष्णव के परिवार में या उच्च कुल के परिवार में राजकुल के परिवार में जन्म लेंगे, और इसके बाद आगे जा सकते भक्ति मार्ग में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण इसमें शिक्षा है इस भरत महाराज जर भरत महाराज के जो यहाँ पर शिक्षा देता है, और इसके वास्तव में हमको ब्रज में प्रवेश करना है और कृष्ण के बारे में श्रवण करना है, रघुनुग भक्ति में प्रवेश करना है। लेकिन जब सड़क के अवस्था में है तो वैदिक भक्ति के अनुसार भी चलना है, तो इसके लिए जो यहाँ पर अलग अलग स्कंद के दसम स्कंद छोड़ के तो अलग अलग जो यहाँ पर लीला है भगवान की अवतार जो ऐश्वर्य भाव पूर्ण भक्ति के बारे में है, लेकिन इससे भी हम बहुत कुछ सीख सकता है कि कैसे रहना है वन आश्रम के अनुसार, कैसे व्यवहार करना है अलग अलग परिस्थिति में, ये भी जानकारी लेना है जो हमारे लिए हमारे हित के लिए है। लेकिन साथ ही साथ इसलिए भी तो चैतन्य चित्तमृत पढ़ना है जिसमें ब्रज भक्ति में परिपूर्णता तो है, और ये भी पढ़ना है वास्तव में चैतन्य चित्तमृत, क्योंकि अंत में ब्रज में प्रवेश करना है और रघुनुग भक्ति के बिना इसमें प्रवेश नहीं कर सकता है, इसका श्रवण ज़्यादा करना है, लेकिन वैदिक भक्ति के अनुसार भी चलना है इसलिए ये भी पढ़ना है और इसका श्रवण करना है। और आज भी तो एक हमारे श्री पोपर के घनिष्ठ और प्रिय शिष्य योगी शिक्षक तिरुभाव है पूज्यपाद जननंद, ये जो पोपर के प्रिय शिष्य जो प्रसिद्ध है कि उनका आज तिरुभाव तिथि है, वो प्रभुपाद उन्होंने बोला है कि हम ये हर साल मनाना है, इसलिए हमारे वैष्णव कैलेंडर में इसमें उल्लेख किया है जयानंद की तिरुभाव तिथि, निशिंग चतुर्दशी के एक दिन से पहले त्रयोदशी तिथि में उनका तिरुभाव हुआ। तो ये प्रभुपाद के शिष्य थे, और जब प्रभुपाद न्यूयॉर्क में थे वहाँ पर उनके पास तो पहुँच गए, और बाहर काम करते थे लेकिन पैसे प्रभुपाद को दिए थे और सहयोग दिया, और जैसे उनके एक किताब जो लीला पुरुषोत्तम किताब इसमें तो ये छापने के लिए पैसे दिए थे, और लेकिन बाद में सब कुछ छोड़ दिया और मंदिर में रहते थे। और जब प्रभुपाद सैन फ्रांसिस्को गए और वहाँ पर पहले बार रथ यात्रा महोत्सव मनाने के लिए तो आदेश दिया था उनके शिष्य को, इनमें से जयानंद भी था, उनको भी बताया कि ये रथ बनाना है, और कैसे बनाने भी तो उनको बताया था, लेकिन तो ये भी महत्वपूर्ण है कि वैसे ही गुरुजी बताता है वैसे ही हमको करना है, जैसे बताता वैसे ही हमको करना है। तो इसमें थोड़ा सा अपने मान से कुछ किया था, तो लगभग ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रॉपर भी बोलते थे करते थे, लेकिन इसमें उनके एक संदेह था इसमें कि मेरे विचार से ऐसा करना है, और प्रॉपर से नहीं पूछा, लेकिन अगर कुछ नॉर्मल जैसे यहाँ पर उनको समझ में ना आया कि वास्तव में क्या बताना चाहता है, और कोई संदेह है तो गुरुजी से पूछना है, लेकिन ऐसा नहीं किया, इसलिए रात में कुछ तरह से गड़बड़ हो गया था। लेकिन क्योंकि उनके भाव अच्छा था और भगवान के प्रभुपाद के लिए सब कुछ कर रहे थे, लेकिन थोड़ा सा उनकी गलती हुई इसलिए रात में थोड़ा सा गड़बड़ था, और जब रात निकल गया अच्छे तरह से नए चलते थे रात, लेकिन फिर भी तो पहुंच गया, यहाँ पर पहुंचना था किसी प्रकार से। और प्रभुपाद भी ज़्यादा नहीं बोला क्योंकि लेकिन बताया भी था तो एकदम मेरे आदेश अनुसार नहीं किया है, इसलिए तो उसे गड़बड़ हो गया, लेकिन ज़्यादा नहीं बोला क्योंकि उनको मालूम था कि बहुत प्रयास किया था जयानंद प्रभु। तो वहाँ पर के का जो मंदिर वहाँ पर केंद्र था, प्रेसिडेंट थे, लेकिन हमेशा भी नम्र भाव में रहते थे। तो जैसे जो कचरा तो था मंदिर के आसपास ये सब उतारते हैं खुद, कूड़ेदान में डालते थे, और जो गाड़ियाँ जो है तो इसका मरम्मत भी करते थे, विनम्र भाव में रहते थे, जो जो खाना था वो खाते थे विनम्र भाव में रहते हुए। ऐसा ना है कि प्रेसिडेंट हो इसको बताते ये करो वो करो और आराम से तो कुर्सी पे बैठा है प्रसाद महाप्रसाद खाते हुए रहते, ऐसा ना है, बिल्कुल विनम्र भाव में रहते थे, दास के दास इस भाव में रहते थे, सबके दास ऐसे करते हुए मंदिर चलाते थे प्रेसिडेंट के रूप में, लेकिन दास के भाव में, इसलिए सबके प्रभुपाद के प्रिय शिष्य थे और प्रेम संबंध था सबके साथ। और वहाँ पर भी तो दया था, दया भाव सबके प्रति, बाहर के लोग भी इसलिए प्रचार भी करते थे, प्रसाद का वितरण करते थे, और जेल में भी जाते थे, जेल में जाते थे प्रसाद बांटने के लिए, तो खुद हलवा बनाते थे और दूसरी चीज बांटने के लिए, और जेल में गया कीर्तन किया प्रवचन, इसके बाद प्रसाद बांटते थे। एक बार एक जेल की ओर जाते थे गाड़ी में वैन में और चार पांच भक्तों के साथ है, और अचानक अकस्मात भूख लग गया, मेरे को बहुत भूख लगता है, जयानंद बोलते थे, थोड़ा सा दूसरे भक्त को बोलती थोड़ा सा मेरे को हलवा दे दीजिए, तो हलवा खा लिया, थोड़ा सा दूसरे को भी दे दिया, वाह ये हलवा बहुत बढ़िया है, और सब खा लिया हलवा। इसके बाद तो भक्त लोग देखा सब, और जयानंद भी बोलते थे हम तो बहुत क्या हम क्या हमने क्या किया है, हमको ये बांटना था महाप्रसाद हलवा जेल में, और हमने सब कुछ खा लिया, ये तो ठीक नहीं है, तो लज्जित हो गया हम कैसे वैष्णव है। लेकिन क्या वहां पर ठीक है, जो भी है वहां पर जेल में जाएंगे, थोड़ा सा कीर्तन करेंगे प्रवचन करेंगे। इसके बाद वहां पर पहुंच गया दरवाजा पे, और जहां पर द्वार पर जो होता है उनको भी मालूम था कि भक्त लोग आएंगे, लेकिन गाड़ी में तो देख के पूछा आपके पास तो खाने के वस्तु तो नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पर उचित नहीं है इसके अंदर ले आने के लिए, अंदर जा सकता है जो भी कुछ प्रवचन करने ठीक है, लेकिन खाने के जो चीज इसमें अंदर ले आना उचित नहीं है। तो भगवान की प्रेरणा से ऐसे तो हो गया कि सब पहले से खा लिया, इसके बाद अंदर गया कुछ प्रसाद किया। और एक बार तो क्या हुआ, तो इन्हें कपड़े तो है प्रचार करने के लिए जो जाता है, लेकिन उसी समय हमेशा तो धोती में नहीं जा सकता था, पुलिस भी रोकते थे, कभी कभी पैंट पहनते हुए तो प्रचार करते थे, तो उनके जो पैंट जो था एक तो फट गया था, तो सोचा तो नया खरीदना है, और तो दुकान में गया और देखा एक पैंट तो ले लिया, और उन्होंने सोचा तो अपने लिए खाच खाना मेरे को अच्छा नहीं लगता है, तो क्या किया जो नहीं करना है लेकिन किया है, ऐसे करके उनके बैग में रख दिया, उन्होंने सोचा ऐसे करके निकल जाएंगे बिना पैसे देते हुए, चोरी करने तो ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने सोचे भगवान के लिए भगवान के पैसे बचाने के लिए ऐसे करेंगे, तो लेकिन पकड़ लिया लोगों के चोरी किया है, तो इसके बाद तो पुलिस को बताया, इसके बाद तो कोर्ट के पास उनको जाना था, तो जज वहां पर उनसे पूछा आपने क्यों चोरी किया है, अब तो यहाँ पर के एक आंदोलन में अब कहता है कि भगवान के सेवक है, भगवान की सेवा कर रहा है, आपको तो मालूम होना चाहिए चोरी करना ठीक नहीं है, उन्होंने बोला हाँ सही है ये चोरी करना ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला लेकिन यह है कि मैंने सोचा आपने लिए पैसे खर्च करना ठीक नहीं है, सब पैसे जो होते भगवान की सेवा में लगाना है, लेकिन मेरे लिए कुछ लेना पैसे खर्च करने में को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैंने ऐसे किया है, और ऐसे करते हुए तो मतलब रोते हुए ये बताया था, ये सुन के क्योंकि इन्हें दिल से बताता था और भाव से, तो ये जज तो था, ये भी तो समझ लिया कि भक्त है और अच्छा विचार है भाव है, ये भी रोने लगे और ये भी बोला ठीक है उसको छोड़ दो, ये भक्त है भगवान को मानता है उसको छोड़ दो, छोड़ दिया। लेकिन आजकल ये ऐसा जज भी दुर्लभ है, लेकिन है अमेरिका में भी है, ज्यादा से ज्यादा लोग नास्तिक है लेकिन है, अभी फेसबुक में बहुत कुछ दिखाता है, मैंने भी देख लिया कभी कभी फेसबुक भी देखता है क्या करे मालूम मेरे किसी अच्छा है कि क्या हो रहा है लेकिन ज्यादा ना है, ये भी सीमित होना चाहिए, ऐसा ना है कि पहले उठ के तुरंत व्हाट्सएप फेसबुक फेसबुक देखते हैं, ऐसा ना है, ठीक ना है, सुबह भजन करना है मॉर्निंग प्रोग्राम के बाद व्हाट्सएप और फेसबुक तो थोड़ा बहुत देख सकता है, लेकिन ज्यादा ना है, खतरनाक चीज है ये भी फेसबुक, जैसे चीनी ज्यादा चीनी लेना ठीक ना है, शरीर के लिए ठीक ना है, ज्यादा जो महाप्रसाद भी सीमित रूप से लेना है, जड़ प्रसाद लेने ठीक नहीं है, सीमित रूप से मिठाई विशेष करके स्वास्थ्य के लिए जितना चाहिए शरीर ये लेना है। ज्यादा लेता है तो आगे नहीं जा सकते भक्ति मार्ग में। जैसे भी सोना, ज्यादा सोना ठीक नहीं है, वैसे ही ज्यादा फेसबुक देखना भजन के लिए ठीक नहीं है। कभी कहते गूगल गुरु, गूगल से बहुत कुछ समझ सकते सीख सकते सही बात है, लेकिन फिर भी गूगल जो है जिससे शिक्षा मिल सकता है लेकिन भक्ति ना मिल सकता है। इसके लिए भजन करना है और शुद्ध वैष्णव के पास जाना है। ये भक्ति भाव देता है, ज्ञान देता है, कुछ भाव भी देता है, लेकिन भक्ति नहीं देता है गूगल गुरु। इसलिए सदगुरु के पास जाना है जिनके पास भक्ति है, विशेष करके ब्रज भाव जिनके पास है। तो ये और लेकिन यह है कि अंत में जो इसके उसका बीमारी क्या कहता है लुकेमिया एक प्रकार के रोग तो उसका हुआ, तो शरीर छोड़ने वाले थे लेकिन किसको नहीं बताया था, दवाई भी नहीं लिया, लेकिन अंत में सबको पता चला, प्रभुपाद को भी, लेकिन फिर भी मेहनत किया है सेवा करने के लिए। विशेष करके न्यूयॉर्क के पहले रथ यात्रा इसका निर्माण करने के लिए अच्छे तरह से और अच्छे तरह से भी किया था इसके लिए। और हाँ तो लेकिन तो ये रथ निकल गया और प्रभुपाद बहुत संतुष्ट है, लेकिन इसके बाद उनका शरीर छोड़ दिया। और प्रभुपाद ने बोला उनके जो इसके लिए उनके लिए एक महोत्सव बनाना है, तो सब भक्त लोग को प्रसाद खिलाया और उन्होंने बोला कि आज के दिन हर साल मनाना है, इसलिए हम दो तीन शब्द उनके बारे में बताया है और इसमें यहाँ पर वाणी का विराम देता हूँ। श्री प्रभुपाद की जय, नंद प्रभु की, सच्चिनंदन गौर हरि की, श्री राधा श्याम सुंदर की, सामवेद भक्त वृंद की, गौ प्रेम नंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम।